ओम शांति ओम शांति ओम शांति। भट्टी माना साइलेंस की अनुभूति में खो जाना, बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी साइलेंस की गहराई में जाने के लिए, ब्रह्म में लीन होने के लिए जंगलों में दौड़ दौड़ कर गए, लेकिन रिजल्ट क्या हुई? सब वापस लौट आए संसार में। क्योंकि ईश्वरीय महावाक्य साइलेंस किसे कहेंगे? इस ओम शांति के मंत्र में साइलेंस छिपी हुई है। भगवान ने घर बैठे हम ब्राह्मणों के लिए साइलेंस की खान खोद कर दे दी है। हमारी संस्था की आदि स्थापना साइलेंस की पावर से ही हुई है। ब्रह्मा बाप जंगलों में नहीं गए भगवान को ढूंढने के लिए या साइलेंस के लिए, लेकिन घर में बैठे बैठे खुद शांति का सागर, उसके घर में और उसी के तन में आकर के खुशियों की खान बांटी। शिव बाबा आए तो हमारी दादियां छोटी छोटी ये सब भी उस शांति के सागर के पास स्वतः ही दौड़ दौड़ कर आ गई। क्योंकि भगवान ने जो साइलेंस का ज्ञान दिया, कहा बच्चे साइलेंस तो तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है। आत्मा का स्वधर्म शांति है, आत्मा का स्वदेश शांति है। तो ये परिचय जब बाबा के द्वारा हमको मिला तो हम सब उस साइलेंस की प्राप्ति में खो गए। एक छोटा बच्चा होता है 2 महीने का 1 महीने का, वो बोलता नहीं है, लेकिन उसको कभी किसी प्राप्ति की कमी नहीं होती। टाइम पर उसको सब कुछ प्राप्त होता है, उसके थॉट भी नहीं चलते मुझे कुछ चाहिए। नेचुरल माँ बाप की छत्र छाया, वो भी धीरे धीरे 2 महीने 3 महीने के बाद उसको महसूस होती है और वो साइलेंस में ही सर्व प्राप्तियां करता रहता है। तो बाबा ने भी हमें ब्रह्मा मुख से पैदा किया और सब भटकन से जो इधर उधर भटक रहे थे, ठोकरे खा रहे थे, सबसे छुड़ा दिया। साइलेंस में रह के ही ब्रह्मा बाप को साक्षात्कार साइलेंस में ही हुआ। उसके बाद 2 शब्द शिव बाबा ने बोले। साइलेंस में ही ब्रह्मा बाप को आकर्षण हुआ। जो सत्संग से उठकर वाणी से परे जाके कमरे में गए और शांति के सागर में प्रवेश करके शांति में डुबो दिया। तो भगवान के द्वारा जो प्राप्त साइलेंस है उसको कहीं बाहर जाके ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इस साइलेंस की पावर को लेकर के तपस्या करते करते जब हमारी दादियां, बाबा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, दादियां इस इतने ऊंचे स्थान पर आबू पर्वत पर आए और हमारी मीठी मनमोहिनी देवी के द्वारा ये स्थान चुना गया था जिसको ब्रज कोठी कहते हैं, वहां पर आए और उसके बाद ये पांडव भवन हम बच्चों के लिए साइलेंस की खान लेकर आ गया। बेगरी पार्ट में भी तपस्या चलती रही तो एक कल्प वृक्ष है जो वर्ल्ड का कल्प वृक्ष है। पांडव भवन हमारा ब्राह्मणों का कल्प वृक्ष है। हर कल्प हम इस स्थान पर आते शक्तियां भरते हैं। बीज रूप शिव बाबा भी आया, ब्रह्मा बाबा भी आया और हमारी दादियां जड़ों के रूप में यहां पर आई और वो जड़ें सारे वर्ल्ड में उनकी साइलेंस की शक्ति देश के विदेश के कोने कोने में पहुंच गई। हर एक देश विदेश का हर एक ब्राह्मण बच्चे को ये पांडव भवन कितना आकर्षित करता है हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। हमारे सेंटर पर ही थोड़ी सी खबर मिलती है पांडव भवन में भट्टी है, लाइन लग जाती है, दीदी हमारा नंबर। अब तीसरी बार भट्टी का नंबर हमें मिला है फिर भी सब प्यासे ही हैं। मोहिनी दीदी, मुन्नी दीदी को कहा बहुत टाइम हो गया हमें चांस नहीं मिला, कहती आपकी संख्या इतनी है स्थान थोड़ा है तो सिर्फ 90 की छुट्टी मिली। 600-700 भाई बहन कैसे छटाई करें, तो कहा जो एक रात भी उस स्थान पर नहीं रहा, नहीं तो आके रहते रहते हैं सभी अपने अपने कहीं किसी किसी से छुट्टी लेके हमें भी नहीं पता लगता, तो वो आत्माओं को चांस दिया जाएगा। तब ये चांस हमको पांडव भवन में आने का मिला। तो पांडव भवन अपने आप में ये शांति का कुंड है जहां स्वयं भगवान ने जो रथ लिया उस रथ पर सवार होके इस भूमि पर चला, वो भूमि में शांति के सागर की साइलेंस के पर कंपन तो भरे हुए ही हैं। इसलिए सब भाग भाग के बाबा का रूम, झोपड़ी, जो भी स्थान है सब उसमें मस्त लीन हो जाते हैं। तो शांति के सागर ने हमें कौन सा पाठ पढ़ाया जो हम इतने साइलेंस में खो गए, कहीं भी नहीं जाना पड़ा। तो बाबा ने हमारी ओरिजिनल पहचान दी जिससे हम बहुत कोसों मील दूर थे, साधनों में फंस गए थे कि यहां से साइलेंस मिलेगी, शांति मिलेगी, नहीं मिली। बाबा ने अपना परिचय, हमारे घर का परिचय और हमारा ओरिजिनल परिचय जब दिया और हम कल्प पहले वाली आत्माओं को ये अमृत मिल गया तो हम खो गए। तो साइलेंस में हमने बाबा को पाकर के बाबा के सर्व संबंधों का जो आनंद लेता है ये है सच्चे साइलेंस। चुप रहने में सर्व संबंधों का सुख अनुभव होता है। जब हम चारों तरफ से सब संकल्पों को समेट देते हैं तो बाबा हमें खुद ही अपनी गोद में बिठा करके सर्व संबंधों का लाड प्यार दुलार देकर के हमें सच्ची शांति में अनुभव करा देता है। अब देखा जाए तो भगवान को ढूंढने की मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि हम शूद्र से ब्राह्मण बन गए, क्या मेहनत की हमने, शूद्र से ब्राह्मण बनने में क्या मेहनत की है। किसी को बहुत ज्यादा मेहनत लगी है तो हाथ उठाएं। सहज कैसे बन गए वो हाथ उठाएं, जिनको सहज मिल गया। बाबा क्यों सहज मिल गया, क्योंकि खुद ने ही आकर हम बच्चों को इस दुनिया के इस मेले में से हम बच्चों को खुद ने ही ढूंढा है, हमने भगवान को नहीं ढूंढा। एक बार की बात है, डायमंड हॉल उस समय बहुत ज्यादा संख्या आ गई, सेवा की ट्रन हमारी थी। अमृत वेले 2 बजे उठ के बाबा को कहा, बाबा कहाँ स्थान देगा, इतना रश हो गया तो मैं आपको दृष्टि आपसे दृष्टि कैसे लूंगी, मुझे बताओ तो सही, ये रश इतना था। तो बाबा ने टच किया, बच्ची तुम भी आई हो मेरे से मिलने के लिए, मैं भी परम धाम से आया हूं तेरे से मिलने के लिए। बाप को बच्चा ना मिले उसको चैन पड़ेगी, तो जिस कोने में बैठ जाएगी मेरी दृष्टि सब तरफ से हटकर तेरे ऊपर ही आएगी। ये थॉट अमृत वेले जब बाबा ने दिया तो मन क्या हो गया, शांत। बाबा मेरे से ही मिलने के लिए आ रहा है और वो मेरे से मिला मिले वापस नहीं जाएगा, और उसको वापस जाना भी जरूर है तो मेरे से तो मिलन मनाएगा ही। तो बाबा इस धरती पर आकर अपना प्यार दुलार बरसाकर रोज मीठे मीठे बच्चे कहकर हमारे संस्कारों को बाबा बदल रहा है। जितने हमारे संस्कार बदलते जाएंगे बाबा की मोहब्बत में, उतना हम साइलेंस की गहराई में ऑटोमेटिकली जाते जाएंगे। हमें इस साइलेंस कहीं ढूंढनी नहीं है, हमारा बाबा खुद ही हमें उस साइलेंस की दुनिया में ले जा रहा है। और साइलेंस में जाने के लिए बाबा ने हमें 2 तख्त दिए। एक भृकुटी के तख्त पर मैं अविनाशी आत्मा हूं, इस तख्त की स्मृति बाबा ने दिलाई। इस तख्त पर जितना हम बैठते हैं उतना भगवान के दिल तख्त पर भी बैठ जाते हैं, और जहां भगवान का दिल तख्त है वहां कोई अप्राप्त चीज नहीं, सब प्राप्तियों से हम संपन्न हो जाते हैं। जब संपन्न हो जाते हैं तो अपने आप साइलेंस की अनुभूति हमारे अंदर चली जाती है। छोटे होते एक कहानी सुनते थे राजा विक्रमादित्य की, कहते उसका तख्त था एक जिस पर जो बैठ जाता था उसकी डिसीजन पावर बढ़ जाती थी, उसके संस्कार बदल जाते थे। तो एक खेत था, उसमें एक बालक घूमता था और उस टीले पर, टीला था वो, क्योंकि सिंहासन तो द्वापर युग में था ना, तो टीले पर आके बैठता था, सबसे बड़े प्यार से बातें करता था। आसपास खेत थे, जो राही आते थे, आओ ये आपका ही है, आप पानी पियो, आप ये खाओ, भूखा नहीं जाना, आओ आओ, सबको आवाज लगा के बुलाता था। और जब वो उस टीले से नीचे उतर जाता था तो डंडा लेके सबके पीछे भागता था, भागो यहां से, भागो यहां से, मेरे खेत में पैर नहीं रखना। वही हालत हमारी है, जब हम अपनी बिरकुटी के तख्त पर बैठते हैं तो आत्मा का जो खजाना है, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, ये हमारी कर्म इंद्रियों की रोम रोम में आ जाता है। और जब हम भूल जाते हैं मैं आत्मा को, और बॉडी कॉन्शियस की मैं आ जाती है, तो यही कर्म इंद्रियां क्या करती हैं, धमचक्कर मचाती हैं, शोर मचाती हैं। तो जरूरत है साइलेंस की, गहराई का अनुभव करने के लिए जरूरत है अपने बिरकुटी के आसन पर। आज भी बाबा ने पाठ पक्का कराया, मैं अविनाशी आत्मा हूं। इस बिरकुटी के तख्त पर इसकी अनुभूति के द्वारा ही हमें बाबा का भी अनुभव होता है, क्योंकि शिव बाबा भी, आज भी बाबा ने कहा, साकार में नहीं निराकार है, तुम आत्मा ही भी निराकार हो, निराकार का निराकार का आपस में मिलन होगा। सत्य परमात्मा है, सत्य मैं आत्मा हूं, दोनों का संगम, दोनों की रू रिहान, दोनों के संबंध में ही सत्संग समाया हुआ है। लोग सत्संग ढूंढने के लिए जाते हैं, मंदिरों में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, पर वो सत्संग नहीं, झूठ संग है, झूठी काया का, झूठे संबंधों के साथ ही। जब पंड कथा सुनाने वाला है वो भी तो देह अभिमानी है, तो वो सत्संग होता ही नहीं है। सत्संग के द्वारा ही ये साइलेंस की शक्ति का अनुभव हमें प्राप्त हो जाता है। जब आत्माओं ने शिव बाबा का परिचय लेके उससे संबंध जोड़ा, तो आयु नहीं देखी, कोई कितना भी छोटा है, कितना भी बड़ा है, पर वो साइलेंस की अनुभूति में चला गया, कुछ नहीं करना पड़ा। ये तो भगवान की कमाल थी, जिसने ढूंढा और हमको अपना बच्चा बनाया। और जो ही हम बच्चे बन गए, चाहे कोई बूढ़ा भी है, बाबा का वो बच्चा अपने को बच्चा ही फील करता है। और जितना हम बाबा के उस बच्चा और बाप इसके रिलेशन में, जिसे बाबा कहते सत टीचर, सत गुरु के संबंध में जितना आ जाते हैं और अपना सब कुछ भूल जाते हैं, तो बाबा के ये ज्ञान रत्न, जो आज बाबा ने कहा, इन ज्ञान रत्नों को दिल में संभालो, अर्थात धारण कर लो। एक एक शब्द बाबा का जब संबंध जोड़ करके, बाबा के इन शब्दों को मैं आत्मा समझ के और संबंधों की अनुभूति में रह के जब बाबा के महावाक्य सुनते हैं, तो वो दिल में छप जाते हैं, फिर हम उसमें खो जाते हैं, उसकी अनुभूति में खो जाते हैं। जब हम उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं तो और भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हरेक आत्मा करती है, जिसे कहा गोप गोपिकाएं ही अतीन्द्रिय सुख का आनंद लेती हैं। तो गोप गोपिकाएं क्या हैं? गुप्त, इस शरीर के अंदर लिपटी हुई गुप्त छोटी सी आत्मा, उस आत्मा की स्थिति में जब स्थित हो जाते हैं, गुप्त आत्मा, गुप्त सोल कॉन्शियस की स्थिति में जब हम टिकते हैं, तो बाबा के प्रेम में जब हम खो जाते हैं, करंट मिलने लगती है, कनेक्शन जुड़ जाता है, ये देह की रबड़ से न्यारी में आत्मा, उस आत्म अभिमानी स्थिति में हो जाते हैं। तो शिव बाबा तो देह से न्यारा है ही, तो कनेक्शन जुट गया, जब कनेक्शन जुट गया तो अपने आप करंट आएगा, आपको फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लाइट जलानी है, माइक चलाना है, सिर्फ बटन ही ऑन करना और तो कुछ नहीं करना। तो स्मृति का बटन ऑन रहे, ऑफ ना हो जाए। तो बाबा ने साधन तो बता दिया, रबड़ उतारनी है, मेरी रबड़ है नहीं, आपके ऊपर है, तो कनेक्शन जोड़ो। तो सर्व गुणों की खान, सर्व प्राप्तियों की खान के हम मालिक बन जाते हैं, मालिक पने की अनुभूति हो जाती है। जो हम साधु संतों से दुनिया में लोग भटक भटक के मांग रहे हैं, थोड़ी सी शांति दे दो, और बाबा ने हमको अपनी सर्व प्राप्तियों का मालिक बना दिया, बालक भी बनाया, मालक भी बनाया। क्योंकि बालक बनने से हम हल्के रहते हैं, मैं बच्चा हूं, मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है, बाबा का बच्चा हूं, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरा रक्षक है, बाबा की छत्र छाया मेरे साथ है। तो बच्चा बन गए तो अपना थॉट चलाने की जरूरत नहीं, बाबा जो कह रहा है वो हमारे अंदर दिल में छपता जाएगा और हम उस डीप साइलेंस की अनुभूति में खो जाएंगे। तो एक है डेड साइलेंस, जो ऋषि मुनियों ने तपस्या करके मांगने की कोशिश की पर वो प्राप्ति नहीं कर पाए, फिर भी बाबा को ही आना पड़ा मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों देने के लिए, और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर भी बाबा ने छोड़ दी। बच्चे जब तक आप जीवन मुक्ति के द्वार नहीं खोलोगे तो मुक्ति का भी नहीं खुलेगा ना, आप ही हो मुक्ति के दरवाजे खोलने वाले। वो खुलेगा जब आप जीवन मुक्ति के दरवाजे पर भी खोलने के योग्य बन जाएंगे, क्योंकि हमें ऊपर जाते ही तुरंत नीचे आना है। जो खजाने हम संगम युग पर भर रहे हैं वो हमें सतयुग में आके यूज करने हैं, और सतयुग में तो करना ही है, बाबा तो कहते इतना खजाना है, अभी भी आप उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे इन कर्म इंद्रियों के साथ, उस ज्ञान रत्नों को, बाबा के गुण और शक्तियों को इन कर्म इंद्रियों में जितना हम भरेंगे, ये कर्म इंद्रियां शुद्ध और पवित्र बन जाएगी, तभी हमें पांच तत्वों का शुद्ध पवित्र शरीर सतयुग में प्राप्त होगा। तो सतयुग की बात तो अलग है, लेकिन अभी हमें संगम युग पर ही उस साइलेंस की अनुभूति में रहना है, जिसके लिए बाबा गीता का ही शब्द बताता, देश ही देह के सर्व संबंध भूल माम एकम, याद करो एक की याद में। तो ये काम बहुत मुश्किल था, सहज नहीं था, किसने सहज कर दिया? वो सर्व संबंधों का सागर, सर्व प्राप्तियों का सागर खुद ही आ गया और मुझ आत्मा को ब्रह्मा मुख के द्वारा अडॉप्ट कर लिया, तो मैं तो वर्षे की अधिकारी हो गई ना, मेरा वर्षा है, मेरे बाप की प्रॉपर्टी मेरी है, तो मुझे उसे ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लोग दुनिया में भटक रहे हैं, मन शांत कैसे हो, क्यों नहीं हो रहा उनका मन शांत? क्योंकि उनके पास साधन ही नहीं है, नेगेटिव ही भरा हुआ है, जो जीवन को डाउन ले जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग, उस वो भी सोच ही है, नेगेटिव बातें भी तो सोच ही है, वो सोच हमें क्या कर रही है, डाउन ले जा रही है, नीचे गिरा रही है, और ये सोच जो बाबा हमको ज्ञान रत्नों की देते हैं, ये सोच, ये साइलेंस हमारी चढ़ती कला का आधार है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनने का आधार है। वो डेड साइलेंस और नेगेटिविटी की साइलेंस बन जाती है, वो भी नेगेटिव की सोच 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 में लोग इतने डूब जाएंगे, क्योंकि इसको तो अपनी होश ही नहीं है, उसमें भी डूब जाते हैं लोग, फिर इलाज कराना पड़ता है होश में लाने के लिए। तो बाबा ने तो हमें पॉजिटिव बातों का खजानों की खान दे दिया है, और वो खान कहाँ है, बाबा के महावाक्य है, मुरलियों में चारों सब्जेक्ट हैं, सर्व संबंध हैं, उन संबंधों के साथ चारों सब्जेक्ट को जब हम दिल में लगा करके उनको सुनते हैं, उनकी गहराई में जाते हैं, तो हम उसमें खो जाते हैं, तो हमें और कुछ इधर उधर लेने की मांगने की किसी से दरकार ही नहीं है। और जब वो अनुभूति में चले जाते हैं तो ये मुख का मौन भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये तब तक चलता है जब तक प्राप्ति की कमी है। जैसे बाबा कहते हैं ना, कोई चीज में अगर भरी हुई नहीं है तो वह हलचल मचाएगी। तो जब तक हम बाबा की मोहब्बत में नहीं खोते हैं तो ये कर्म इंद्रियां भी कुछ ना कुछ चंचलता करके हमारे मुख को भी बुलवा देती है, आंखों को भी चंचल कर देती है, हाथों को भी चंचल करा देती है, फिर मन भी चंचल होके उठ के भागता है, टिकता ही नहीं है। पर बाबा के खजाने पर, मुरली पर और बाबा की मोहब्बत और प्रीत में जितना हम खो जाते हैं, उतना हमारा मन साइलेंस में चला जाता है, और उस साइलेंस की अनुभूति जो प्यार भरी बाबा के सर्व संबंधों की भरी हुई, सर्व प्राप्तियों से भरपूर वाली जो साइलेंस है, उसमें 3 घंटे भी बैठ जाएंगे तो उठने को दिल नहीं करेगा। तभी दादियों के अनुभव क्या है। बाबा के पहले महावाक्य 8-8 पेज के चलते थे, वो भी ज्यादा भी होते थे। तो हमारे पास जो राज दीदी है वो भी दादियों के संग में रहे थे, हम छोटे थे संग में तो हम भी रहे, पर वो इतना कैच नहीं था, इतना क्लोज नहीं थे। तो दीदी कहते मैं कई बार कोशिश करती थी आगे बैठने की, तो मनमोहिनी दीदी कहते थे देख बैठ भले जाओ तुम यहाँ, पर जो बाबा 3 घंटे मुरली सुनाएगा ये टांग नहीं हिलानी तुम्हें, ऐसे ही बैठे रहना, तो बैठो यहां पर। इसलिए कई कहते हैं ना दादियां ही क्यों आगे बैठती हैं, उनको उस अभ्यास हो गया था। 3 घंटे भी बाबा भी नहीं टांगे हिलाता था, तो जो दादियां थी वो भी टांगे नहीं हिलाती थी, क्यों नहीं हिलती थी टांगे, उस साइलेंस में, उस मोहब्बत में, उस प्रीतम की प्रीतम बातें सुनते सुनते उसमें खो जाती थी, तो ये शरीर की होश ही नहीं होती थी, शुद्ध बुद्ध बोल जाते थे। इसे कहते डीप साइलेंस, जो एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बाबा दूसरा ना कोई का मतलब ये नहीं कि मैं ये बैठ के करती रहूं शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, नहीं, शिव बाबा के जो खजाने हैं उन प्राप्तियों में खो जाना। बाबा का एक एक मुरली का महावाक्य हमें प्यार लुटाता है, स्नेह देता है, शक्ति देता है। वो बाबा के महावाक्यों से उस शक्ति और उस प्रेम में खो जाओ तो मजा ले, ये कर्म इंद्रियां आपको कुछ कहेगी, शांत होके बैठी रहेंगे डीप साइलेंस में। तो बाबा की सच्ची प्रीत मोहब्बत जो साइलेंस की अनुभूति कराती है, उसमें सुख समाया हुआ है, और उसका आधार बच्चे बन जाओ। बच्चे माना जो प्योर होते हैं, बच्चे कहते हैं ना बच्चा प्योर होता है, तो बाबा ने आके हमको बच्चे कह के ही हमारी ये पवित्रता का पाठ पक्का करा दिया। गृहस्थी भी आए बाबा के घर में, मम्मा की गोद में चले जाते थे, अपने को क्या फील करते थे, मैं बच्चा हूं, बच्चा हूं। हमारे पास ऐसे युगल लुधियाना के हैं जिन्होंने बाबा की गोद ली थी, तीन तीन बच्चे थे उनके। एक भाई जी थे खुशीराम सहानी जी, जब उनको बाबा से परिचय मिला, मिट्ठू दादी थे तब लुधियाना में, तो कहा अभी जाना है मिलने बाबा से, दादी आ रहे थे साथ ही आना है, बच्चे को 102 बुखार है, कहता जाना है। दादी ने बड़ी कोशिश की नहीं जाना, बच्चे को बुखार है कुछ हो जाएगा, कहता मेरा बाबा बैठा है ना। तो बाबा की मोहब्बत में ऐसे खो गए और निश्चय में ऐसे खो गए, बच्चे को कुछ होएगा ही नहीं ना जब बाबा है तो मेरा। तो बच्चा पहुंच गया यहां पर, गोद में ले आए उसको और बाबा से मिलन किया। तो बच्चे बन गए तो चिंता खत्म, मैं गृहस्थी हूं ये खत्म, ये बच्चा मेरा है ये खत्म, कि बच्चे को बच्चा कहां से आया, मैं खुद बच्चा हूं बाबा का तो मेरा बच्चा कहां से आया। तो बाबा के ये मीठे मीठे बोल जो साकार में बाबा ने बोले, वो बोल सुनते ही जिन आत्माओं ने डायरेक्ट सुने, उस सुनते ही वो प्रैक्टिकल में उसी समय ले आते थे, क्योंकि सर्वशक्तिवान डायरेक्ट बाप के बोल ब्रह्मा के मुख से निकल रहे होते थे। फिर नंबर वार तो है ही है ना, पर डायरेक्ट पालना में इतनी पावर थी। हम भी बहुत छोटे थे, मम्मी के साथ आए थे, हिस्ट्री हाल था, कल भी मैं किसी को बता रही थी, उस गेट से हम आए, ठंड बहुत होती थी तो मम्मी ने जल्दी उठाया नहलाया और जी चलो बाबा जल्दी आगे बैठेंगे सोच में ले आए। तो अब नींद तो आएगी ना छोटे बच्चे को, 7-8 साल की होंगी, तो नींद आ रही थी, आगे बैठ तो गए। आप मानेंगे पिछले गेट के आगे हम बैठे थे, दो इस्तियाल के दो गेट है ना ऐसे ऐसे, बाबा इधर से आए और हम उधर बैठे थे। आप मानेंगे बाबा ने जो ही पैर हाल के अंदर रखा, वो नींद पता नहीं कहां भाग गई, बाबा ही उड़ा के ले गया उस नींद को, आंखों में दोबारा नींद नहीं आई। ये डायरेक्ट भगवान के वाइब्रेशन, जिसे बाबा हम बच्चों को कहते हैं आप भी उस मोहब्बत की डीप में चले जाओ और साकाश भेजो। तो ब्रह्मा बाबा भी खोए हुए थे उसी डीप में और वो डायरेक्ट भगवान था ना शिव बाबा। अब इतने छोटे बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ गया और क्या है, नहीं तो बच्चे आगे तो सो जाते हैं ना सत्संग में, और मुझे तो सोए हुए को जगा दिया था, और मुरली भी समझ जितनी बुद्धि थी वैसी समझ आई थी। उस समय बाबा ने एक्शन करके बताई थी, ये मक्खी आई है ना बच्चे देखो अभी मक्खी आई है, 5000 वर्ष के बाद फिर आएगी। अब इतनी सी बात याद करना तो कोई मुश्किल काम नहीं था, एक्शन की ना बाबा ने। और बाबा में अपने पन की अनुभूति तो हमें बचपन से हो गई थी, यही है मेरा बाबा है, पिछले जन्म का भी शायद बाबा के साथ हिसाब होगा इसलिए ये अनुभूति ऐसी होगी। तो वो बात तो हमें याद रही। हम घर में गए, कहा क्या सुन के आए हो, बाबा ने कहा 5000 साल के बाद ये मक्खी अभी आई है ये फिर आएगी, यही भगवानों वाच थे। अब इसके पीछे और भी तो कई राज है ना, वो थोड़े समझ आए थे अभी बुद्धि में, इतना तो आ गया। ये सृष्टि चक्कर घूम रहा है, ये मक्खी बार बार आएगी। तो डीप साइलेंस वाले भाषा को भी नहीं देखते। हिस्ट्री में बताते हैं कि बेंगलोर के शायद अंगना भाई नाम था उनका, उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, पर जब माँ बाबा मुरली सुनाते थे वो झूमता था मुरली में। कैसे झूम रहा है? अपनी भाषा तो आती है ना उसको, अब वो तो सुनने में आ नहीं रही है, सुनने में तो बाबा की भाषा आ रही है, पर वो डीप साइलेंस में जाके वो बाबा के एक एक एक्शन को, एक्टिविटी को वो बच्चा कैच करता था। मैंने काफी एज थी, अंगना भाई जी फेमस है, यज्ञ हिस्ट्री में आता है नाम उनका, तो खुशी में नाचते थे, जबकि समझ नहीं आ रहा फिर क्यों नाच रहे हैं, क्योंकि खुद साइलेंस में जाके भगवान के साइलेंस के शब्द उसको आराम देते थे और वो खुशी के नशे में खो जाते थे। तो हम भी जितना बाबा मुरली में भी कहता है बच्चे ये मुरली कैसे सुनने, उसकी विधि क्या है, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होके। एक बाबा के महावाक्य हैं, आत्मिक स्वरूप में टिक करके फिर बाबा के महावाक्य सुनो तो ये महावाक्य आपके दिल में छपते जाएंगे। और अगर बॉडी कॉन्शियस आया तो ये दिल से बाहर निकल जाएंगे। कहते हाँ सुना तो था पर याद नहीं है, बॉडी कॉन्शियस का पर्दा आया तो शब्द निकल गए, सोल कॉन्शियस स्थिति में आया तो बाबा के महावाक्य दिल में छप रहे हैं। लौकिक में देह की बातें लोग सुनाते हैं वो दिल में छप जाती है, कहते दिल से निकल ही नहीं रही है बात, इतनी गहरी चली गई। और यहां हमें भगवान रोज हमसे इतनी इतनी बातें करता है डायरेक्ट, तो वो दिल में कितने छपते हैं, जितने वो छपते जाते हैं उतना हम साइलेंस की अनुभूति में खो जाते। कौन सी साइलेंस? डेड नहीं, सर्व प्राप्तियों की साइलेंस है। इस साइलेंस के द्वारा ही इस धरती पर स्वर्ग स्थापन होगा। उनके डेड साइलेंस से क्या प्राप्ति हुई? घर में वापस लौट आए। बाबा की साइलेंस की शक्ति से इस धरती पर स्वर्ग स्थापन हो रहा है और उसके मालिक हम बन जाएंगे। तो बाबा के जो अनमोल महावाक्य हैं वो दुनिया में बाबा कहते ढूंढ लो कहीं नहीं मिलेंगे, बाबा के द्वारा ही मिलते हैं। और हम चात्रक बच्चे उनको जितना अपने अंदर लाते हैं उतना हम साइलेंस में जाते हैं और सतीन्द्रिय सुख का आनंद लेते हैं जो संगम युग पर ही मिलता है, फिर कभी नहीं मिलता। ये प्यार, ये मोहब्बत बाबा की हमें सतयुग में नहीं मिलेगी। इसलिए ऊंचा युग कौन सा? संगम युग। ऊंचा जीवन? ब्राह्मण जीवन। इसलिए गाया हुआ है। हम कल परसों सोच रहे थे विराट रूप में लोगों ने जो बनाया ब्राह्मणों को दिखाया ही नहीं है। बाबा ने भी मुरली में कहा क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि लोग हमें पहचानते नहीं है। तो अभी हमें पहचाने तो वो चित्रों में दिखाए ना। तो हम गुप्त हैं बाबा के बच्चे, गुप्तचर अपनी विश्व की राजाई स्थापन कर रहे हैं साइलेंस के बल पर। तो यही हमारी योग भट्टी है, जो हम उस डीप साइलेंस में खो करके अपनी कर्म इंद्रियों पर भी जीत पा रहे हैं, बाबा को भी अपने दिल में बसा रहे हैं और वो दिल की मोहब्बत से बाबा के कार्य में मददगार बन के हजार भुजा वाले बाबा की भुजाएं बन करके हम धरा पर अपने लिए ही अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। गुप्त रूप में किसी को नहीं पता कि ये लड़ाई कर रहे हैं, पर हमारी लड़ाई लगातार चल रही है। पर बाबा कहते मीठे लाले बच्चे लड़ाई बंद करो, अगर अभी भी लड़ते रहोगे तो क्षत्रिय कुल में जाना पड़ेगा। आज भी बाबा ने कहा क्षत्रिय कुल वाले को क्या नहीं कहेंगे, देवता नहीं कहेंगे, पर हम किस लिए आए हैं? तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, युद्ध को मोहब्बत में बदलना पड़ेगा। जितनी मोहब्बत बाबा से होगी उतनी मेहनत से हम छूट जाएंगे, और मेहनत तो तभी लगती है ना जब युद्ध करते हैं। तो युद्ध नहीं है हमारी, हमारी क्या है, मोहब्बत है। ओम शांति। अब दीदी सुनाएंगे, नहीं अभी रहते 10 मिनट। हाँ जी, हाँ ये दीदी कराएंगे, और फिर खुशखबरी ये है कि फिर शीलू दीदी आएंगे, वो तो दीदी अपने मुख से बताएंगे।
ओम शांति। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती दीदी ने अपने मुखारविंद से साइलेंस के बल को बहुत सुंदर रीति पिताश्री ब्रह्मा बाबा, दादियां और योग भट्टी के अनुभव को लेकर, अपने जीवन के गहरे आत्मविमानी स्थिति के स्वरूप को लेकर जो साइलेंस के बल के ऊपर क्लास कराई, वो वास्तव में नेचुरल और नेचर में उतरी हुई क्लास थी। तो हम एक हाथ की ताली से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगी इस क्लास के सुनने के बाद कि हमें योद्धा नहीं बनना है, योगी बनना है। साइलेंस का बल जमा करना है तो उसके लिए हमें कुछ बातों को ध्यान पे रखना है। तो वो है, हमें हमारी सकारात्मक सोच को बहुत बढ़ाना है, साथ साथ हमारी प्रैक्टिस बहुत लंबे समय की हो, क्योंकि बल जो होता है वो एक दिन में जमा नहीं होता है। बल लंबे समय तक जब उस कार्य को करते हैं तब वो बल जमा होता है। तो ऐसे ही अब हमने यहाँ 5 दिन की योग भट्टी में अपने साइलेंस के बल को इकट्ठा किया है, इकट्ठा किया है ना। 5 दिन सब मन से शांत, तन से शांत, कर्मेंद्रियों से शांत, स्वभाव संस्कार से शांत, सब में शांति का अनुभव कर रहे हैं। और ये अनुभव कर रहे हैं, यही ब्राह्मण नेचुरल लाइफ है। अब आवश्यकता है कि इसको लेकर के हम वहां जाएंगे, और वहां जाकर भी हम कर्म योगी बनकर ऐसे ही शीतल शांत, जैसे कोई तालाब के अंदर अंगारे को फेंक दे तो क्या करते हैं, तालाब अंगारे को क्या करता है, बुझा देता है, उसे भी शांत बना देता है। ऐसे ही हम कहते हैं कि हम तो शांत रहते हैं, हमारा बल लीकेज कहां होता है, हम तो शांत रहना चाहते हैं, हम तो शांत रहते हैं, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो अब मैं वो सरोवर हूं, मैं वो अवतरित आत्मा हूं जो पिता श्री ब्रह्मा बाबा के सन्मुख कोई आत्माएं आती थी तो वो सन्नाटे में चली जाती थी, अपनी बात भूल जाती थी। अब मुझे वर्तमान समय की आवश्यकता और ये 5 दिन की योग भट्टी मुझे उस शांति के बल को जमा करने की जरूरत मांग रही है। हो सकता जैसे धन बल एक दिन में नहीं इकट्ठा होता, रोज उसे इकट्ठा करते हैं करते हैं, पहले धनी बनते हैं, फिर धनवान बनते हैं, फिर धन बल आता है। ऐसी पहले शांति आती है, फिर शांति का शक्ति आती है, फिर शांति का बल आता है। हम अपनी नेचर में रेगुलर सुबह अमृत वेले से लेकर 4 बजे से लेकर 8 बजे तक मन की शांति, तन की शांति, स्वभाव संस्कार की शांति को जमा करें और अपने को अवतरित आत्मा समझें। एक है वातावरण से शांत रहना, एक है वातावरण को शांत बना देना। तो अब आपको ये भट्टी कॉल कर रही है, पुकार कर रही है, समय आपका पुकार कर रहा है, हमारी एडवांस की आत्माएं हमारा आवाहन कर रही हैं, पुकार रही हैं, हमारे मम्मा बाबा हमें जून मास हमारी आंतरिक शांति को आवाहन कर रहा है कि हम अपनी शांति की शक्ति को घंटों में समय की अवधि को बढ़ाते जाएं, जिससे वातावरण की अशांति का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, बल्कि हमारी अवतरित शांत आत्मा का शांति के स्रोत से जो शांति मैंने इकट्ठी की है, बल जो मैंने इकट्ठा किया है, उसके प्रकंपन चहुं ओर फैल जाएं। दीदी कह रही थी कि हमें योगी बनना है, योद्धा नहीं बनना। मुझे विश्वामित्र की कहानी शास्त्रों की याद आ रही थी, जिस पर उन्होंने कहा है, वो जब तो आत्मबल था ऋषियों के पास, तो परमात्म बल था ही नहीं, लेकिन उनके पास भी इतना बल था शांति का कि हिंसक शेर भी अहिंसक हो जाता था। उनके विचारों की इतनी सकारात्मकता थी, इतनी समर्थता थी, इतनी शांति की शक्ति उनमें जमा थी कि हिंसक शेर उनके आश्रम के इर्द गिर्द आता था और वो इर्द गिर्द आकर के उनके चरणों में बैठ जाता था, और चरणों में नहीं बैठता था बल्कि उनकी सेवा करने लगता था, तलवे चाटने लगता था। इसे कहते हैं शांति की शक्ति। हम क्या कहते हैं, मैं तो बहुत शांत था पर बात ही ऐसी थी। वो बात को मुझे जब आत्मबल वाले ऋषि मुनियों की तपस्या, ऐसा सोच और ऐसे उनके प्रकंपन थे जो हिंसक शेर अहिंसक बन जाता था। शांति माने डबल अहिंसक। हम योद्धा हैं, डबल अहिंसक हैं। मन से भी साइलेंस, वचन से भी साइलेंस, कर्मेंद्रियों से भी साइलेंस। जब श्रेष्ठ कर्म की पराकाष्ठा हमारी इंद्रियों से हो जाएगी तो हम शांत हो जाएंगे। पिताश्री ब्रह्मा बाबा का भी एक उदाहरण है कि बाबा जब ब्रज कोठी भरतपुर की थी, उसमें निवास करते थे, तो वहां एक सर्प जहरीला बाबा के पांव से आके लिपट गया। अब जैसे ही बच्चों ने देखा तो बच्चे तो डर गए, और डर के बाबा को बचाने के लिए, उस सांप को मारने के लिए कुछ उठाने की कोशिश करने लगे, संकल्प चलाने लगे, तो बाबा ने बच्चों को इशारा किया, शांत किया, नहीं। और वो सर्प इतना जहरीला था, इतना बड़ा था, जो बहुत ही खतरनाक था, लेकिन बाबा ने सबको शांत कर दिया अपने शांति के प्रकंपन के द्वारा। धीरे से बाबा ने उसको दृष्टि दी, और जैसे बाबा ने उसको दृष्टि दी तैसे ही बाबा के पैरों को छोड़कर वो सांप क्या हुआ, चला गया। उसके जाने के बाद बाबा ने, बच्चों ने बाबा से कहा, बाबा वो तो बहुत भयंकर जहरीला था, काला था, ऐसा था, लेकिन बाबा मुस्कुराकर दृष्टि देते रहे और कहा, वो भी तो बाबा का बच्चा था, वो भी बाबा से प्यार, पैरों से लिपटकर प्यार प्रीत वर्षा लेने आया था। हमारी ये भट्टी तपस्या का बल, पवित्रता का बल, हमारी समर्थता की ताकत का बल, हमारी आत्मशक्ति, परमात्म शक्ति का शक्ति इस प्रकार के बल का आवाहन करती है। हमारा नाम क्या है, ब्राह्मण तो हम है ही हैं, लेकिन हमारा नाम है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। तो जो हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने किया है, वैसा ही बल हमें भी आज अपने अंदर धारण करना है। घर के अंदर देखो, सोच के अंदर देखो, पुराने स्वभाव संस्कार के अंदर देखो, कार्य क्षेत्र पर देखो, वातावरण में देखो, प्रकृति के पांचों तत्वों में देखो, सब जगह क्या है, अशांति ही अशांति है। लेकिन हमें उन्हें सकारात्मक सोच, समर्थ सोच, अर्थात पवित्रता का सोच, वो शांति का सोच है, उससे हमें अपने बल को जमा करना है। ठीक है, तो योगी नहीं बनना है, योगी बनना है, योद्धे नहीं बनना है, डबल अहिंसक बनना है। डबल अहिंसक माने किसी भी हालत में अपने स्वधर्म और स्वदेश और स्वकर्म को नहीं भूलना है। स्वपिता शांति का स्रोत है। मेरा नाम भी क्या है, ओम शांति। लोग हमारा परिचय क्या देते हैं, ये ओम शांति वाले हैं, ये ओम शांति में जाते हैं, ये ओम शांति बोलते हैं, इन्हें राम राम नहीं बोलना, नमस्ते नहीं बोलना, इन्हें क्या बोलो, ओम शांति। ओम शांति माने मैं शांत स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, शांति नहीं है सिर्फ, स्वरूप में शांति, रोम रोम में शांति। योगी बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए औरों की, दे दे अपना संग। कैसा भी कोई जहरीला है, कटीला है, कमजोर है, असहाय है, असमर्थ है, असंभव है, लेकिन मैं शांति के सागर की, शांत स्वरूप में स्थित, शांति धर्म की धारणा वाली, शांति की अवतरित आत्मा, शांति का स्थापित करने वाली, शांति के बल वाली आत्मा हूं। ओम